ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह 9:17 पर अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये यान 175 किलोग्राम वजन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 और एक अन्य छोटे उपग्रह SR-0 के साथ रवाना हुआ। इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने के लिए इस प्रक्षेपण यान का विकास किया है। ये यान 34 मीटर लंबा और लगभग 119 टन भार का है। इस पर लगभग 56 करोड़ रूपये की लागत आई है। इसरो के अनुसार इस प्रक्षेपणयान विकास परियोजना से भारतीय उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण में मदद मिलेगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल विश्व के नेताओं ने शुभकामनाएं दी और आने वाले वर्षों में भारत के साथ अपने संबंधों को और सशक्त बनाने पर बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वाधीनता दिवस पर सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भारत के साथ रूस अपने रणनीतिक संबंधों को विशेष महत्व देता है और उसके साथ संबंधों को विस्तार देने का इच्छुक है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत इटली की रणनीतिक साझेदारी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कनाडा भारतीय मूल के 13 लाख से अधिक लोगों का घर है। ईरान ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि दोनों देशों का परस्पर एजेंडा अपने समग्र संबंधों को बढ़ाना है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने अपने संदेश में कहा कि ये शुभ दिन भारत की असाधारण विकास यात्रा का प्रमाण है। निर्वाचन आयोग आज दोपहर राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग के दल ने हाल ही में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोनी गोविंदेन आज केरल के कोट्टायम में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ द्वारा आयोजित कानून और प्रौद्योगिकी, टिकाऊ परिवहन, पर्यटन तथा तकनीकी नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, कानून विशेषज्ञ, शिक्षाविद तथा तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करना और टिकाऊ परिवहन तथा पर्यटन से संबंधित चुनौतियों के लिए नवीनतम कानूनी समाधान विकसित करना है। कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म तथा हत्या और उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की। चिकित्सा संघ ने कहा कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। अमरीका ने कहा है कि इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम तथा बंधकों की रिहाई के समझौते पर दोहा में कल वार्ता के एक नए दौर की शुरुआत हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोहा में शाम तक बातचीत जारी रही और सभी प्रतिभागियों के बीच आज भी बैठक होगी। अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जो 15 सितंबर तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण 2024 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को अमृत उद्यान का भ्रमण करने का निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।